بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی تعزیت قبول فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے اقتصادی بحران، حکومتی شٹ ڈاؤن اور اس کے عالمی اثرات کے بارے میں۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، امریکہ میں اقتصادی بحران اور حکومتی شٹ ڈاؤن جاری ہے۔ 800,000 سے زائد سرکاری ملازمین تقریباً 2 ہفتے سے بغیر تنخواہ کے جبری چھٹی پر ہیں، جبکہ 13,00,000 سرکاری ملازمین بغیر تنخواہ کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دونوں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دے رہے ہیں۔ ریپبلکن اراکین پارلیمنٹ صدر باراک اوباما پر خودسری اور ضد سے کام لینے کا الزام لگا رہے ہیں، اور حکومت ریپبلکن پر عوام کی مشکلات کو نظر انداز کرنے اور حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام لگا رہی ہے۔ اس درمیان عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ہی کئی اہم بینکوں اور مالیاتی اداروں نے بھی موجودہ بحران کے جاری رہنے اور امریکی حکومت کے نادہندہ ہو جانے کے خطرناک عالمی نتائج کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے امریکی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کو مزید طول نہ دیں اور جلد از جلد کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کے اقتصادی بحران اور حکومتی شٹ ڈاؤن کے اسباب اور اس کے عالمی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان کو، اور لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لیں گے برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے بحث میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر صحافی، ممتاز کالم نویس اور تجزیہ نگار سجاد میر کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
امریکہ میں حکومت کے ممکنہ ڈیفالٹ کو محض 4 دن کا وقت باقی رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود سینٹ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے مابین کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پایا ہے، اور دونوں ہی فریق 13 دن سے جاری حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی تجاویز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہو سکے ہیں۔ ہفتے کے روز شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی کوششیں سینٹ میں جاری رہیں، جہاں دونوں فریقوں کے مابین مذاکرات ہوئے، لیکن تعطل کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں نکل سکی۔ سینٹ میں ریپبلکنز نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا جس میں اوباما کیئر سے موسوم حکومتی میڈیکل پروگرام میں کوئی بھی اصلاح یا تبدیلی کیے بغیر سن 2014 میں قرض کی سطح بڑھانے کی بات کہی گئی تھی۔ اس تجویز کی مخالفت میں 53 اور حمایت میں 45 ووٹ پڑے۔ اس سے پہلے ریپبلکن سینیٹروں سوزان کولنز اور آر مائن نے مالیاتی تعطل ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی تھی، جسے ڈیموکریٹس نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس تجویز میں بہت معمولی مراعات کے بدلے بہت سے مطالبات رکھے گئے ہیں۔ اس تجویز میں 6 مہینے کے لیے فراہم کرنے کی بات کہی گئی تھی، جبکہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اوباما کیئر منصوبے کو 2 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو میں سینیٹ کے ڈیموکریٹ چیئرمین ہیری ریڈ نے کہا کہ وہ پیر تک ریپبلکن رہنماؤں سے مذاکرات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ سینیٹ میں قرضے کے منصوبے پر اتفاق رائے نہ ہو پانا افسوسناک ہے۔ کانگریس کو چاہیے کہ حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کروانے اور حکومتی قرضے کی سطح بڑھانے کے لیے فوری طور پر کوئی حل نکالے۔ امریکہ میں وفاقی حکومت کی سرگرمیاں 1 اکتوبر کو اس وقت جزوی طور پر معطل ہو گئی تھیں جب حزب اختلاف کی اکثریت والے ایوان نمائندگان سے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور نہ ہو پانے کے بعد وائٹ ہاؤس نے کچھ وفاقی محکموں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان صدر اوباما کے ہیلتھ کیئر پروگرام کے سلسلے میں اختلافات ہیں اور ریپبلکن پارٹی اس پلان کے لیے بجٹ منظور کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ امریکہ کو شاید مستقبل قریب میں ایک اور بحران کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ جمعرات کو امریکہ کا قرض مقررہ حد تک پہنچ جائے گا اور اگر قرض لینے کی حد نہیں بڑھائی گئی تو 17 اکتوبر کو امریکی حکومت کے پاس اپنے اخراجات کے لیے رقم ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ ملک میں شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے حزب اختلاف کی جانب سے ہیلتھ کیئر کے قانون میں تبدیلی کی شرط تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے جہاں اس ملک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، وہیں دنیا کی دیگر متعدد معیشتیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ عالمی بینک کے صدر جم یونگ کم نے خبردار کیا ہے کہ حکومتی قرض کی حد میں اضافے کے بحران کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایک خطرناک وقت چند ہی دن دور رہ گیا ہے۔ انہوں نے امریکی قانون دانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعرات کی حتمی مدت سے قبل ہی حکومت کے قرض لینے کی حد میں اضافے پر سمجھوتا کر لیں۔ جم یونگ کم نے کہا کہ اگر یہ اتفاق رائے نہ ہو پایا تو یہ نہ صرف ترقی پذیر دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا بلکہ اس سے ترقی یافتہ ممالک کی معیشتوں کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ موجودہ تعطل کے سلسلے میں گوناگوں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک قیاس یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال امریکہ میں صہیونیت نواز حلقوں کی جانب سے امریکی صدر اوباما کے خلاف تادیبی کارروائی ہے، جنہوں نے حالیہ کچھ ہفتوں کے دوران ان حلقوں اور اسرائیل کی مرضی کے برخلاف کچھ اقدامات انجام دیے ہیں۔ ان اقدامات میں خاص طور پر ایران اور شام کے سلسلے میں کسی حد تک امریکی رخ میں پیدا ہونے والی تبدیلی ہے۔
جی ناظرین، امریکہ میں اقتصادی بحران اور حکومتی شٹ ڈاؤن کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان سودے بازی اور زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنے کی کوشش ایسی حالت میں جاری ہے کہ امریکی حکومت کو ڈیفالٹ ہونے میں صرف 4 دن رہ گیا ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر اگر حکومت اور اپوزیشن میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا تو حکومت امریکہ نادہندہ قرار دے دی جائے گی۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ بیرسٹر یوسف اختر صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن اور اقتصادی بحران کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟
جی، بنیادی، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو جو امریکن تاریخ اور سیاست کو سمجھتے ہیں اور حکومت کس طرح چلتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر سال
جی
سینٹ اور کانگریس کو 12 مالیاتی بلز
جی
پاس کرنے پڑتے ہیں تاکہ حکومتی وفاقی جو ادارے ہیں ان کے اخراجات وغیرہ پورے ہوتے رہیں
جی۔
تو لیکن اگر اس میں کوئی تعطل ہو جائے تو بحران کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک کانگریس میں اور سینٹ میں
جی
دونوں میں ایک ہی پارٹی کی اکثریت ہو تو کوئی مشکلات پیش نہیں آتی، لیکن جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے، کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کی ہے، اور وہ دونوں نظریاتی طور پر آپ کو پتا ہے کہ بعد المشرقین ہے دونوں پارٹیوں میں
جی جی،
تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی سہولت دی جائے۔ دوسرے، آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ امریکہ میں جب سے یہ بارک اوباما حسین اوباما صاحب صدر بنے ہیں، وہاں کی جو ریسس لابی ہے اور وہ لوگ جو ان کو انتہا پسند ہیں
جی،
ان کی جن کی اکثریت زیادہ تر ریپبلکن میں ہے، وہ ہر صورت ان کو ناکام کرنے پر مزید ہیں اور مصر ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی ان کا نام تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پہ آئے جس کے زمانے میں ملک مستحکم ہوا، معیشت مستحکم ہوئی اور لوگوں میں بے روزگاری ختم ہوئی۔ تو یہاں انہوں نے جو اوباما صاحب نے پچھلے سال ایک بل پیش کیا تھا جسے اوباما کیئر کہتے ہیں، جو صحت سے متعلق تھا، اس کی جو پرویژن تھیں اگرچہ عام لوگوں کے لیے نہایت مفید تھیں، لیکن उसकी वजह से खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता था
जी।
इसलिए जो रिपब्लिकन है, कांग्रेस है, वो उसमें रोड़े अटका रही है मुसलसल। तो वो करते क्या हैं, जब ये बिल पास ना हो सके तो एक स्टॉप गेट यानी स्टॉप गैप बजट पास किया जाता है, जिसे कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो लास्ट जो बजट था ऐसा, वो 28 मार्च 2013 को पास हुआ था और उसकी मुद्दत 6 महीने थी, जो 30 सितंबर को ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और स्टॉप गैप बजट या कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन को पास करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो ओबामा साहब का केयर प्लान है उस पर ये दोनों की आपस में ठन गई है। और वो ये चाहते हैं कि ये केयर प्लान जो है, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से मईशत पर बुरा असर पड़े और बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ें, उनको हज़फ़ कर दिया जाए। लेकिन अगर उसे हज़फ़ कर दिया जाए तो एक आम आदमी को जो रियायत वगैरह देने का मकसद है और कुछ सहूलतें देने का मकसद ओबामा साहब के पेश नज़र था, वो फौत हो जाता है। तो इस मौजू पर दोनों अवानों में ठनी हुई है और वो एक दूसरे को मुरीद एग्जाम ठहरा रहे हैं। असल बात यह है, और वो नहीं चाहते कि हुकूमत की जो कर्ज लेने की सतह है, जिसकी वजह से वो अपने अखराजात पूरे किए जाते हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी हो। इस वक्त वो 16.7 ट्रिलियन साल का जो है वो ले सकते हैं कर्जे, लेकिन वो मालियत ख़त्म हो जाएगी और उसकी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। तो 17 तारीख को इस वक्त ये मुद्दत ख़त्म होगी, और उस वक्त अगर ये बजट पास ना हुआ, ये कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास ना किया, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो अदारे हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और उसकी वजह से इंतहाई भयानक असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं मुल्क की मईशत पर भी और बैनुल अक्वामी सर्कल्स में अमेरिका की साख की भी। क्योंकि जैसा कि सब लोग कहते हैं और समझते हैं कि अगर अमेरिका को छींक आ जाए तो तमाम दूसरी दुनिया को फ्लू हो जाता है या नज़ला हो जाता है। तो वहाँ के अगर अदारों में, मालियाती अदारों में, जो पहले ही बहुत अरसे से बहरान का शिकार हैं, ख़ासतौर पर बैंकिंग का, 2008 में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था, उसकी वजह से ट्रिलियंस डॉलर थे वो उन बैंकों को देने पड़े और बेल आउट करना पड़ा। उसके असरात भी तमाम दुनिया पर हुए, बरतानिया में जहाँ बैठे हुए वहाँ भी हुए, और यहाँ के बैंकों ने भी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट करने की कोशिश की और पैसे दिए। तो यही सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी, जिसके नतीजे में बैन अवी ताल्लुकात में भी फ़र्क पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनल वो, और जो माहदे हैं वो, और ख़ास तौर पर यह कि अगर अमरीका नादहिंदा हो जाए, वो कर्ज ना होने की वजह से, माल ना होने की वजह से, तो बेअंदाज तरीके से उनकी साख जो है वो मुतासिर होगी, जो अमेरिकन लोग जो हैं, जो मुहिब वतन हैं, वो नहीं चाहते। उसमें रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लाख जो अफराद हैं, वफाकी अदारों के मुलाजमीन हैं, उनको घर बैठना पड़ेगा। उसे वो कहते हैं फरलो दे देंगे, यानी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, बाद में तनख्वाह तो मिल जाती है, लेकिन कितने अरसे तक ये तातुल रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए। जैसा कि सबको मालूम है 1995 और 96 में भी ये एक तातुल हुआ था जो 21 दिन जारी रहा था, और उसके प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में। जी
शुक्रिया। तो
शुक्रिया। अब सूरत हाल बिगड़ती है और पास ना हुआ तो बहुत मुश्किल पेश आ सकती है।
जी बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे, और इस वक्त चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहाँ हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद हैं। अंजान साहब आदाब अर्ज़ है। अंजान साहब, अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत कहा जाता है, वो इस मरहले में कैसे दाखिल हो गया कि आज 8 लाख से जायद सरकारी मुलाजमीन 13 दिन से बगैर तनख्वाह के जबरी छुट्टी पर हैं, और 13 लाख सरकारी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह के काम करने पर मजबूर हैं?
देखिए, अमेरिका की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, इक्तिसादी पॉलिसी ऐसी है जिससे दुनिया आज तबाह हो रही है।
जी।
दुनिया को वो लूटते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज के यहाँ वो लूट चलाते हैं, उनकी दौलत को लूटते हैं, उनके बाजार को लूटते हैं, उनकी जमीन की जो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो लूटते हैं, और लूट करके वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को जरा कुछ बांटते हैं ताकि लोग खुश हो सकें, जरा लोगों को बता सकें कि अमेरिका कितना ताकतवर है, और एक एक जिसको कहते हैं शैडो नेशनलिज्म, एक परछाई वाला राष्ट्रवाद एक पैदा किया जाता है और उससे वो वहां चलती है। आप जानते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स कहने को तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के हाथ है, नाम बड़े खूबसूरत हैं, डेमोक्रेट जो इंसानीय किरदार में अगर कहा जाए तो जमहूरियत पसंद, रिपब्लिकन यानी जो आवामी लोगों की बात को सियासत में जोड़े, समाज में जोड़े, ऐसी सोच की पार्टी। लेकिन दोनों ही पार्टी बुनियादी तौर से अमेरिका की कॉरपोरेट घरानों की पार्टियां हैं, अमेरिका के बड़े बड़े खरबों खरब रुपए की जो कंपनियां हैं वो चलाती हैं इन पार्टियों को। और अगर ये कहा जाए कि ये दोनों पार्टियां टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम के तहत चला करके असली मामले में ये जो हथियार बनाने वाले अमेरिका में कारखाने हैं बड़े बड़े, जो दुनिया के अंदर लड़ाई कराते हैं, जिनका हेडक्वार्टर पेंटागन की पॉलिसी बनाता है, जो जिनके जो पेंटागन की पॉलिसी से ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं दुनिया के अंदर, जो दो मुल्कों के बीच में झगड़ा कराकर अमेरिका अपने ही मुल्क के बनाए हुए हथियार दोनों मुल्कों को बेचता है और फिर बाद में दादागिरी करता है कि अमन अमान कायम करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। इसी से उनकी सियासत भी चलती है, इसी यही है उनके माशी मामलों का पूरा। और आप याद करिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार अगर कोई मुल्क है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन पेश ऐसे किया जाता है कि दुनिया की हां हथियारों की ताकत बड़ी है, बड़ी हथियारों की ताकत है और यूनाइटेड नेशन पर कब्जा है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आज चूंकि अमेरिका में है तो सारे लोगों को इकट्ठा करके, किसी को रेवड़ी बांटकर, किसी को कुछ कहकर, किसी को डरा के, किसी को धमाकर, उस पूरे मामले में अपनी बात करते हैं। इसीलिए न तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाना चाहते हैं, न वो सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनकी हामी न भरते हों। और आज आप देखिए इन्हीं सब का असर यूनाइटेड स्टेट्स के बाजार पर पड़ा है। 2008 का जो इक्तिसादी गोहरान था जिसमें 9.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था और वो अब 70% बढ़कर के अब आ गया है 16.7 ट्रिलियन डॉलर का, जो हमारे दानिश्वर लंदन से बोल रहे थे। ये अगर ये खतरा क्या है, ये पूरा का पूरा आज सिर्फ आप ये समझ रहे हैं इस इक्तिसादी गोहरान से कॉरपोरेट घरानों की पकड़ सरकारी इदारों पर मजबूत हो रही है, म्यूनिसिपैलिटीज घाटे में जाएंगे, कॉरपोरेशन से के पास पैसा नहीं होगा, सरकार पैसा देगी नहीं, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, कॉरपोरेट घराने म्यूनिसिपैलिटी को खरीद कर अपनी जेब में रखेंगे। एक नए किस्म का अगर मैं ये कहूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नई दादागिरी है और जमहूरियत के नाम पर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, पूरी की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सारे के सारे समाजी इदारों पर, एजुकेशनल इदारों पर, सियासी इदारों पर तो पहले उनकी पकड़ थी, अब अवामी इदारों पर और गवर्न करने की सर जो हुक्मरानी की तमाम मशीनरी है उस पर भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की पकड़ मजबूत होती जा रही है और ये दुनिया के लिए खतरा है। और हम समझते हैं कि ये जो इक्तिसादी गोहरान है वो ये बतलाता है कि अमरीका का जो जमहूरी निजाम है वो अभी खतरे में पड़ गया है।
अंजाज साहब, एक सवाल हम और आपसे करेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आप देखिए कि 13 दिन से अमेरिका में हुकूमती शटडाउन जारी है और रोज़ाना तकरीबन $1 अरब का नुकसान हो रहा है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की आपसी चपकलिश जो अमेरिका में जारी है जिससे $1 अरब का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, 8 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम घर बैठे हुए हैं और 13 लाख सरकारी मुलाजिम बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मफाद है उनके पीछे पेश नज़र कि जिस पर वो इतना नुकसान मुल्क का बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए, एक बड़ी लड़ाई है जी अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में जी। और चलिए ये आखिरी दौर है, एक ओबामा साहब को 3 साल और राष्ट्रपति और सदर के इस तरह से हुक्मरानी करने का, लेकिन जो तमाम अमेरिका के छोटे छोटे स्टेट्स हैं या बड़े स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर सीधे सीधे टक्कर हो रही है रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स। और ये सवाल इसलिए भी है कि अगर आज अरबों रुपए का नुकसान है उनको मालूम है। ये नुकसान किसकी वजह से? ये नुकसान तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने तरीके से पूरा कर देंगे, सरकार के घाटे को पूरा करेंगे, लेकिन शट डाउन करके वो ये बतलाना चाहते हैं कि ओबामा फेल हो गए और डेमोक्रेटिक पार्टी फेल हो गई, इसलिए अगला इलेक्शन रिपब्लिकन के ही रहते रख आप जो है पूरे अमेरिका को महफूज रख सकते हैं। और इसके पीछे एक बात और है कि अगर अमेरिका की इक्तिसादी हालत कमजोर होती है तो दुनिया में उसकी दादागिरी कमजोर होती है, और जब दुनिया में दादागिरी कमजोर होने की गुंजाइश बनती है तो अमेरिकन नेशनलिज्म को रिपब्लिकन पार्टी उभार करके बड़ा करके पेश करेगी और एक तरीके से अमेरिका की पॉलिटिक्स में, अमेरिका की सोशल पॉलिटिकल लाइफ में वो मजबूती पकड़ेगी। और पेंटागन के अंदर, CIA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस एनालिसिस जो है उनके अंदर एक बड़ी मजबूत पकड़ रिपब्लिकन पार्टी की है, क्योंकि रिपब्लिकन ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर एग्रेसिव इंपीरियलिज्म, हमलावर साम्राज्यवाद की नीतियों से ही अमेरिका बच सकता है। और उनकी एक नई कोशिश यह भी है कि दुनिया के अंदर एनर्जी जहां प्रोड्यूस हो रहा है, जहां एनर्जी है, जहां तेल है, जहां गैस है, जहां कोयला है, जहां ये सारी चीजें हैं, उन मुल्कों को अपने कब्जे में लिया जाए, तभी अगले 50 साल तक अमेरिका प्रॉस्परस या मिडिल पास का प्रॉस्परस कंट्री रह सकता है। वरना जो एशियन इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, जो चाइना का इकॉनमी बढ़ रही है, जो हिंदुस्तान की इकॉनमी से खतरा पैदा हो रहा है, जो बाजार के ऊपर रोक लगने का खतरा हो रहा है, और जगह जगह लोगों के अंदर खुद मुख्तारी, मुल्कों के अंदर खुद मुख्तारी की जो एक जज्बा पैदा हो रहा है, उससे अमेरिका की साख घट रही है। उस साख को बनाए रखने के लिए रिपब्लिकन अपनी दादागिरी कायम करते हुए ए सियासी ही और एक सादी बहरान पैदा करके डेमोक्रेटिक पार्टी को हाशिए पर डालना चाहती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब, अमेरिका में हुकूमत और हिज्ब इख्तलाफ दोनों अपने मौके पर डटे हुए हैं। रिपब्लिकन सदर ओबामा पर जिद्दी और खुदसर होने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि सदर ओबामा रिपब्लिकन अराकीन ने पार्लियामेंट पर अवाम की मुश्किलात पर तवज्जो न देने और हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये नहीं चाहते कि जो इनका केयर बिल है जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ है, ये किसी तरह भी उसी हालत में पास हो जैसा कि उसकी प्रोविजंस, बिल की प्रोविजंस मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि उससे, जैसे मैंने पहले भी अपने उसमें ख्यालात में कहा था कि उसकी वजह से जो अखराजात हैं, तिब्बी अखराजात हैं, जैसा कि आपको मालूम है बरतानिया में भी एक बहरान है जो यहाँ की नेशनल हेल्थ में है, तो वहाँ अमेरिका में भी अगर ये बिल उसी तरह बायने ही पास हो गया तो उससे सियासी तौर पर ओबामा साहब को बहुत फ़ायदा है, जो किसी सूरत भी वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स हैं वो किसी सूरत भी उसे ठंडे पेटों, जिसे कहते हैं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि मुझसे पहले हिंदुस्तान से दानिश्वर साहब ने फरमाया, अटल साहब ने, कि अगला इंतखाब जो होगा वो, अगरचे उसमें 3 साल बाकी हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी दोबारा रिपब्लिकन्स आ जाएं, जो उससे पहले भी 2 मरतबा बुश साहब के, जैसे आपको मालूम है, जूनियर 2-8 साल वो रहे थे, और उसके नतीजे में जगह जगह जंगें शुरू हुई, क्योंकि उन जंगों का मकसद भी यही है कि अमरीकी जो मईशत है जिसका ज़्यादातर इन्हिसार वहाँ की असला साज फैक्ट्रियों पर है, जो दिन रात ऐसे मोहलक तरीन हथियार और महंगे तरीन हथियार बनाती हैं, जो दूसरे मुल्कों में गड़बड़ कराकर वहाँ डिसेबिलिटी पैदा करके वहाँ की हुकूमतों का तख्ता उलटकर या उनको बहरानों का शिकार करके अपना टू फिश इन दी ट्रबल्ड वाटर, जिसे कहते हैं, अपना लुच तलने के लिए ये काम करते हैं, और इसी तरह इनकी मईशत का पहिया चलता है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी वहाँ पर उनको संभाला ना मिले और अगले दफ़ा भी हम रिपब्लिकन आ जाएं, और उसकी वजह से उनकी जो अजाइम है सारी दुनिया के लिए वो पूरे कर सकें। अभी जैसा कि सब हालात जानते हैं कि वो वजिद थे, ओबामा साहब भी और उनके दूसरे हवारी भी, कि किसी तरह भी शाम पर भी हमला कर दिया जाए, जिसके नतीजे में तमाम अरब ममालिक जो हैं वह मजीद कमज़ोर हों, इसराइल मजबूत हो और दूसरों की मईशतों पर जाकर कब्ज़ा किया जाए, वहाँ के तेल और दूसरे जो ज़खायर हैं उनके मादनी, उन पर भी तसल्लुत इख्तियार किया जाए, और इसी तरह इनकी मईशत का पहिया चलता रहे। तो ये जो है आपस में ठनी तो हुई है, लेकिन उसकी वजह ज़्यादातर सियासी है और वो अजाइम हैं जो अमेरिका की दोनों पार्टियों के पेश नज़र हैं। लेकिन क्योंकि इससे फ़ायदा अगर बिल पास हो जाए उसी तरह तो गरीबों को ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में आइंदा भी जो डेमोक्रेट हैं उनके जीतने के जो आसार है वह है वो चांसेस बढ़ जाते हैं जो उनको मंजूर नहीं है। तो इसीलिए दोनों अड़े हुए हैं। ओबामा साहब उसके बोनियर साहब को जो वहाँ के कांग्रेस के स्पीकर हैं उनको मुर्दाजान ठहरा रहे हैं और रिपब्लिकन को ठहरा रहे हैं, वो इनसे कहते हैं कि तुम मगरूर हो और तुम अपनी बात पे एरोगेंट हो और अड़े हुए हो और यू वांट टू गिव वे इन एनी वे। तो उसकी वजह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। लेकिन एक आम आदमी, जैसा कि उससे पहले इन्होंने भी कहा
अंजान साहब ने,
जैसे कि एक आम आदमी उसमें कुचला जा रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया।
जितना ये तूल खींचेगा उसके नतीजे में एक आम आदमी की हालत ज्यादा से ज्यादा खराब होती जाएगी।
जी बैरिस्टर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे दोबारा। अंजान साहब को कहीं जाना है, वक्त नहीं है, तो एक सवाल अंजान साहब से करके हम उनसे इजाज़त लेंगे, फिर आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अंजान साहब, अमेरिका में जो मौजूदा डेडलॉक है इससे बहरहाल आवाम को तो परेशानी है, 8 लाख से ज़्यादा लोग जो घर पे बैठे हुए हैं बग़ैर तनख्वाह के उनके घर वाले हैं, 13 लाख अफराद जो बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं उनकी फैमिली के लोग हैं, ये अपनी मुश्किलात अपनी जगह पर है। इसी के साथ आलमी मईशत पर भी बहरान के बादल मंडला रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपकी निगाह में कौन है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन या दोनों?
देखिए अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अंदरूनी मामले में तो एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं
जी।
लेकिन जब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनको घंटी दिखा देती है कि अब तुम्हारी लड़ाई से हमारे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दोनों एक हो जाते हैं। अभी दुनिया के पैमाने पर जिस तरह से अमेरिकन इकॉनमी पिछले दिनों इसकी मईशत लड़खड़ाई थी, अब कुछ कुछ बढ़ने लगी
जी।
तब ये जो अपने मुल्क के अंदर जो बहरान पैदा हुआ है, इसने एक नया रास्ता खोल दिया है कि क्या अमेरिकन इकॉनमी को ऐसे ही चलने दिया जाए या दुनिया में अपनी पकड़ को बनाने के लिए फेडरल रिजर्व सिस्टम को अमेरिका में बदला जाए। और इसीलिए ओबामा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी और मुल्क के अंदर जो बेचैनी पैदा हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए फेडरल बैंक का, रिजर्व बैंक का एक मुसम्मात को चेयरमैन बनाकर के लाकर पेश किया है और बता रहे हैं कि उनके पास सारी दवा है, उनके पास वो तमाम रास्ते हैं जिनसे अमेरिकी जो इक्तिसादी बहरान है उस बहरान है उसको ठीक करने के लिए उनके पास कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिससे कुछ मदद मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ दिन चलने के बाद रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक समझौता अमेरिका के कॉरपोरेट घराने और अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस करेंगे। जैसा हमारे अभी दोस्त दानिश्वर लंदन से कह रहे थे और सही कह रहे थे कि अभी इस झगड़े के चलते, इस इक्तिसादी बहरान के चलते अमेरिका का शाम का जो प्लान था, जो सीरिया में हमला करने का प्लान था, वो थोड़ा भटक गया है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल का दबाव अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, आज दुनिया में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के दुनिया के तमाम मुल्कों में जो असलहे बेचने का काम है इसमें बड़े आगे आगे हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी पिछले 3-4 सालों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इजराइल के हथियार इस देश के अंदर सबसे, अब पहले रशिया का सामना था, अब रशिया से नंबर 2 आ गया, फ्रांस को पीछे धकेल दिया उन्होंने और खुद अमेरिका को पीछे धकेल करके अब इसराइल हमारे फौजी साजो सामान को बेचने का भारत में एक बड़ा अड्डा बना रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो लोग साम्राज्य की सियासत चलाते हैं, जो मुल्कों की खुद मुख्तारी पर हमला करते हैं, जो मुल्कों के बीच में तफरका पैदा करके उनको हथियारों की सप्लाई करके दोनों तरफ से लड़वाते हैं, वह लोग कौन है? वह लोग तो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक हद तक रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी को अंदरूनी मामले में लड़ते हुए सेनेट में और कांग्रेस में लड़ने की इजाजत देता है, लेकिन एक लिमिट के बाद इजाजत नहीं देता। और वो लिमिट मेरे ख्याल से इस बात को देख करके तय हो जाएगी कि ओबामा का केयर बिल कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके में आगे पीछे लेन देन के हिसाब से सेनेट और रिपब्लिक और कांग्रेस में दोनों में मंजूर होगा, और तब ये देखेंगे कि कैसे दोनों के अंदर आपसी लड़ाई भी है और आपसी इत्तेहाद भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मौजूदा शटडाउन से अमरीकी मईशत को रोजाना तकरीबन $1 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। अमरीका की दोनों सियासी जमातें जो अपने मौकफ पर डटी हुई हैं, जिसमें ओबामा केयर को बुनियादी हैसियत हासिल है, तो क्या आप ये समझते हैं कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर बजट उसी तरह मंजूर हो जाता है जिस तरह डेमोक्रेट पार्टी और हुकूमत चाहती है, तो इससे अगले इलेक्शन में डेमोक्रेट पार्टी के हक में असर पड़ेगा, और अगर इसको ख़त्म कराने में रिपब्लिकन कामयाब हो जाते हैं या इसको तब्दील कराने में, तो इससे उनको फ़ायदा पहुंच जाएगा? तो ये सिर्फ अगला इलेक्शन उनके मद्देनज़र है या पर्दे के पीछे मामला कुछ और है?
जी हाँ, देखिए ये मामला जो है खासे कॉम्प्लेक्स हैं, सिर्फ एक ही वजह नहीं है
जी।
लेकिन इसमें ऐसी सूरत है कि अगर ये नाकाम भी हो
जी
और वो बिल किसी सूरत पास ना हो, तो क्योंकि वहाँ की जो के अवाम हैं उनकी नज़र में तो ये चीज़ है ना कि क्या कौन सी प्रोविजंस हैं और वो किसके मफाद में जाती थी और कौन उनकी मुखालफत कर रहा है। तो इस सूरत में अगर देखा जाए इस तनाजुर में, तो जो रिपब्लिकन्स हैं उनको हर सूरत में नुकसान का ज़्यादा खदशा है और इम्कान है, लेकिन वो इस तरफ नहीं चाहते, सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है, वो चाहते हैं कि डिस्टेबिलिटी पैदा की जाए, ओबामा को नाकाम किया जाए और उसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा हों, क्योंकि उससे आलमी मईशत जो है वो भी मुतासिर होती है, तो दूसरे ममालिक पर जब फ़र्क पड़ेगा तो वहाँ जाके उनकी हुकूमतें कमज़ोर होंगी, तो फिर इनको अपने मफादात हासिल करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये फिर अपना दखल अंदाजी करेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ जगह इन्होंने अपने सींग फंसा रखे हैं, ईरान से भी इन्होंने अपना झगड़ा मोल ले रखा है, उधर सीरिया के अंदर भी इनके मफादात हैं, उधर पाकिस्तान की तरफ भी नज़रें रहती हैं कि वहाँ का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको किसी तरह ख़त्म किया जाए, और बहुत से जो हमारे अरब ममालिक हैं उन पर भी इनके अपने अपने दांत तेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स मसला है, तो ये एक सिर्फ ओबामा की सेहत का बिल नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा मुरीद इल्ज़ाम जैसे आपने सवाल किया था मेरे पेशरों से, वो ये है कि ज़्यादा इसके अंदर हाथ रिपब्लिकन्स का है और उन्हीं को ज़्यादा नुकसान भी होगा इलेक्शन में, चाहे सूरत हाल क्यों ना हो। लेकिन गुज़िश्ता 33 सालों में 17 इस किस्म के बहरान आ चुके हैं, और वो जो शटडाउन है वो हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है, और ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं 8 लाख आदमियों को दिया है, लेकिन वो उसको कहते हैं फरलों पर भेज दिया, छुट्टियों पर हो गया बगैर तनख्वाह के, लेकिन तनख्वाह उनको फिर भी बहरहाल मिल जाती है बाद में, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको जारी रहना भी पड़ता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, पब्लिक सेफ्टी है, और जो अपना नेशनल रिजर्व है, सफारत खाने हैं, और किसी किस्म की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी हैं, उनको तो उनका पहिया चलता रहता है, मईशत का पहिया चलता रहे, लेकिन इसके जो असरात हैं वो देर पा हैं, इसीलिए चीन ने भी कहा है, रूस की तरफ से भी बातें हुई हैं, और दूसरे ममालिक भी ये कह रहे हैं कि भी इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका असर दूसरी मईशतों पर भी होता है, और दूसरे ख़ासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो मुझसे पेशरों थे उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि जैसे इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें चाइना है, उसमें हिंदुस्तान है, उसमें कुछ और ममालिक हैं, उनको भी आंखें खोल कर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इनके अजान क्या हैं, और किसी सूरत भी इन न्यू कॉन्स को कामयाब ना होने दिया जाए, क्योंकि उसी में तमाम दुनिया का फ़ायदा है, और हम एक दूसरे से बजाय लड़ने के और उनके जो अजाइम हैं इसराइल के उनको पूरा होने से रोकने के लिए इनका साथ ना दें, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है, उसमें भी तशवीश पाई जाती है, पूरे यूरोप में भी पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे वो इकोनॉमीज़ जो डॉलर लिंक्ड हैं वहाँ तो रोज़ भी अपना जो बहरान पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से आप जानते हैं बेरोज़गारियाँ बहुत हो जाती हैं और वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गरीब अवाम दुनिया भर में गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं, और ये तमाम उनके अशाख्साना है उन पॉलिसीज़ का जो उन दोनों पार्टियों ने अपना रखी हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया था उसमें ज़्यादातर जो इल्ज़ाम है वो रिपब्लिकन्स पर आता है, जी हाँ, और जो डेमोक्रेट जो हैं वो ज़रा इसमें नहीं है, क्योंकि वो तो बिल पेश कर रहे हैं और उनको हर सूरत में इलेक्शन में तो फ़ायदा होगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर कालम नवीस और मुमताज़ तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
जनाब, यह अमरीकी जो इक्तिसादी बहरान है और वहाँ हुकूमती शटडाउन जारी है, 4 दिन रह गए हैं कि अगर 4 दिन के अंदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं होता है तो अमरीकी हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, ये जो सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार आपकी नज़र में कौन है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स या दोनों मिलके कोई खेल?
जिम्मेदार तो इसका वो सिस्टम है जो अमेरिका में राइज है
जी,
वो सरमायादारी का सिस्टम, और जिसके साथ एक साम्राज्य अजायम भी है
जी,
कि उन्होंने अपने अपनी करेंसी को आलमी सतह पर इस तरह बना दिया है कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर जाएगा।
जी।
तो किसी ने बड़े खूबसूरत लिखा है कि चाइना में एक जमाने में एक इंकलाब था जिसको गैंग ऑफ फोर का कहते थे, जिसमें माओ की बीवी भी शामिल थी और लगता था कि उन्होंने इख्तदार पर कब्जा कर लिया है, कल्चर रेवोल्यूशन आ गया है। तो गैंग ऑफ फोर या चार का टोला जो था बहुत मशहूर हुआ है
जी।
इन्होंने कहा है, किसी ने कहा है कि ये गैंग ऑफ पार्टी है, ये 40 का टोला है, बल्कि अगर हमारी जबान इस्तेमाल की जाए तो 40 चोर और अली बाबा भी इनका कोई होगा। इन लोगों ने खासतौर पर रिपब्लिकन के जो लोग हैं इन्होंने होस्टेज बना रखा है, इन्होंने ओबामा केयर को एक तरह से जिसको वो सिस्टम है वो तो पास तो हो गया, अब उसको फंड ना प्रोवाइड करने के लिए बजट को ना पास करने की तैयारी जो डिटेल आई है कई माह से करनी शुरू कर दी थी। ये लेकिन एक मजाक नहीं है कि आप एक बात को रोकने के लिए और एक पार्टी को पार्टिजन पॉइंट ऑफ व्यू से खराब करने के लिए पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा दें। और असल में हमें क्या परवाह है, अमेरिका की अगर इकोनॉमी तबाह भी होती है तो जाए जहन्नम में, लेकिन असर उसका ये है कि उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ता है
जी।
ये तेल की जितनी खरीदो फरोख्त होती है खासतौर पर ओपेक कंट्री से, ये डॉलर में हो रही है, और डॉलर में इनकी जो 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 खरीदो फरोख्त है खासतौर पर सऊदी अरब के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत दुनिया की बड़ी करेंसी अब उनकी बैकिंग सोना नहीं है बल्कि बैकिंग डॉलर है, और डॉलर की बैकिंग सिर्फ पेट्रो डॉलर है जिस डीजल लफ्जों में कहा जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्योंकि पूरी दुनिया पे पड़ रहा है इसलिए हमें इसकी तशवीश है। बाकी शटडाउन का जो मामला है ये तो टेक्निकली मुझे तो इनका समझ नहीं आता, ये भी एक ड्रामा ही है जो अमेरिका का ये कैपिटल सिस्टम जो है दुनिया के साथ लगा रहा है। उनका निजाम ठीक, अभी मैं सुन रहा था, अंदाजा नहीं हुआ मुझे कौन बोल रहा था, लेकिन ये क्योंकि लेट शामिल हुआ हूँ मेरी बदकिस्मती, लेकिन ये अंदाजा मुझे हो गया है कि वहां बहुत सी छोटी मोटी बातों में प्रॉब्लम तो पैदा होंगे और हुए हैं, लेकिन वो एक तरह का निजाम चलता भी जाता है। असल इम्पैक्ट तो उसका ये है कि अगर उन्होंने डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं किया तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। 15 ट्रिलियन की वो जो एक सीलिंग है, देखिए दुनिया से कर्जा लेकर अपनी मैशत चला रहा है, अब वो कहता है कि हम ज्यादा कर्जा लेने का हमें आप हक दे दें ताकि हम और दुनिया को लूटें और दुनिया से लें। अच्छा, वो ऐसा निजाम बना दिया है इस यहूदी ने कि हद ये है कि चीन भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में करता है, और चीन की इन्वेस्टमेंट ना हो और जापान की इन्वेस्टमेंट ना हो तो अमेरिका की मईशियत ही नहीं है, पैसा उनका है, मशरक का पैसा है, मैं यूं मशरक कहूंगा इनको अब चीन और जापान को, और ऐश ये मगरब कर रहा है उस पैसे पर, यानी अमरीकियों का पैसा थोड़ा है, उनके टैक्स पेयर का पैसा थोड़ा है, दुनिया का लूटा हुआ पैसा, दुनिया ने अपना पैसा वहां इन्वेस्ट किया हुआ है और बैकिंग उसकी वही मईशत है जिसको डॉलर की मईशत कहते हैं, और उसके जोर पे अमेरिका अपने लल्ले तल्ले कर रहा है। तो ये सारा डामाडोल तो होगा, लेकिन लगता है कि अगर उसमें जरा भी सैनिटी मौजूद है इनके पार्लियामेंटेरियन में तो ये 4 दिन से पहले इस मसले का कोई फाइनल हल ढूंढ लेंगे। ओबामा ने भी जिसे कहते हैं ना बड़ा फर्म स्टैंड लिया हुआ है कि वो कहता है मुज़ाकरात बाद में करेंगे, पहले ये आप मसला तय करें, और दूसरी पार्टी भी फिलहाल लगता है अड़ी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि ये अमरीकन जमहूरी सिस्टम के लिए भी एक टेस्ट है, दुनिया में जमहूरियत के कई निजाम हैं, पार्लियामेंट बरतानिया का अपना है, फ्रांस जर्मनी का अपना है, इनका अपना है, इनके निजाम का भी एक टेस्ट है कि किस तरह एक प्रेसिडेंट को आप एक हटाने के लिए, मैं नहीं कहता कि ओबामा की पॉलिसियां, ओबामा की पॉलिसियां बेशुमार खराबी हैं और बहुत अच्छाइयां भी हैं। हम कहते थे मुस्लिम दुनिया के वो खिलाफ जा रहा है, लेकिन अब ये भी नजर आ रहा है कि मसलन ईरान के साथ इतना पुराना तनाजा जो अमेरिका का चल रहा है, इंकलाब के साथ ही शुरू हो गया था, उसमें भी कोई नरमी पैदा हुई है। हमारे लिए फिलहाल तो पॉजिटिव बात है, उसके इरादे क्या है, उसके नतज क्या निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना जी। सारी सूरत हाल बताती ये है कि ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, ये हल ना हुआ तो पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट पड़ना लाजमी
जी। सज्जाद मीर साहब, अमरीका के इक्तसादी बहरान से आलमी मईशत के मुतासिर होने के असबाब क्या है?
असल में बात यह ग्लोबलाइजेशन हो गई है ना जी। ग्लोबलाइजेशन का अंजाम ये है कि जो अमेरिका का कारखाना है वो अब चीन में लगा हुआ है
जी।
अब शायद चीन से उखाड़ के इंडिया में चला जाए, और हो सकता है अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के माहौल का मामला जो है जब बेहतर हो जाए तो चार छह कारखाने यहाँ भी आ गए। देखिए ये मईशत इस तरह की है कि अभी हमारी टेक्सटाइल सनत और चीन की टेक्सटाइल सनत जो है वो मुकाबला कर रही है, और अभी लेकिन हमारी जो जो तौलिए हैं, ये टॉवल्स हैं और ये जो चीजें हैं जो निटवेयर होता है उसमें पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जो चीजें हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना जा रही हैं, क्योंकि चाइना वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहा है और वैल्यू एडिशन में ये चीजें उनको महंगी पड़ती हैं लेबर के लिहाज से। और आइंदा पांच साल में असेसमेंट है कि हमारी जो बेडशीट है वो भी चीन जाएगी, हमारा सरमायादार उस पर काम कर रहा है। इस तरह पूरी दुनिया में सरमाया किसी का, मेहनत कहाँ सस्ती मिलती है, वही कारखाना लग जाता है। अमेरिका में बेरोजगारी आई, सरमायादार ने कहा कि मैं क्यों यहाँ पैसा खर्च करूँ, वो सस्ता बना के वहां से क्यों ना मंगा लूँ। हमारे यहाँ हुआ कि जो जब कैचअप बनती है टमाटर की, वो किसी ने स्टडी की और कहा कि आप मलेशिया से बनाएं, 10 साल पहले की बात है, और बनी बनाई लाएं पाकिस्तान में 2 रुपए सस्ती बनेगी, फलां साबुन जहां से महंगी पड़ेगी सिंगापुर से सस्ती पड़ेगी। तो ये जो ग्लोबल मईशत बन गई है और उसमें असल निजाम जर है और सरमायेदारों का सिस्टम है, जो वो ये चाहते हैं कि इस सिस्टम के तहत जहां ज्यादा प्रॉफिट हो वही सरमाया चला जाए, इस पूरे सिस्टम की वजह से ये एक पूरी दुनिया एक ही निजाम में जकड़ी हुई है। इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ता है जी, इसलिए इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये जो डॉलर है, ये डॉलर चूंकि इन्होंने बेसिक करेंसी बना ली है और जिसके पास जितना डॉलर का रिजर्व है गिना जाता है कि वो उतनी मजबूत मईशत उसकी। अब बैंक सोना थोड़ा रखते हैं, अब डॉलर रखते हैं रिजर्व में, और डॉलर के पीछे पुष्ट पे क्या है, उसके पीछे भी सोना नहीं है, उसके पुष्टे पे पेट्रो डॉलर है, उसकी कमाई है, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ जो उसका एग्रीमेंट था वो भी अगर से कमजोर होता जा रहा है। उसकी कमजोरी की वजह यह है कि खुद वहां तेल निकल आया है अमेरिका में, या जहाँ एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए निकल आए हैं, तो ऐसी सूरत में आप यही समझें कि इसका असर एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मईशत ही ऐसी है, निजाम ऐसा बन गया है जिसे ब्रेटन वुड सिस्टम कहते हैं 44 से, वो निजाम टूटता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल टूटता हुआ दिखाई देता है। अब दुनिया को एक नए सिस्टम की, एक नए निजाम की जरूरत है, वो हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते ये देखने की बात है। खुद मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, हम कहते हैं कि कम्युनिज्म और सरमायेदारी के मुकाबले में हमारा पास एक मुतबादल निजाम मौजूद है, उस निजाम को ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करना, मैं महाजी ने मईशत से कहता रहता हूँ और उस पर इसरार करता हूँ, वो बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मुसलमान जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ईरान या सऊदी अरब या दूसरे बहुत से ममालिक तो तेल की दौलत की वजह से ये कारोबार कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी पर, जहाँ प्रोडक्शन ही उनकी आमदनी का जरिया हो और दूसरी चीजें हो, उस पर आप गौर करना चाहिए। हमारे माहरीन को बैठ के सोचना चाहिए कि कैसे हो सकता है कि हम इनके मुकाबले में एक नया मुआशी निजाम ले आए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद मीर साहब, और इसी के साथ हम बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब के भी शुक्रगुजार हैं और अतुल कुमार अनजान के, तीनों हजरात की गुफ्तगु आपने मुलाहिजा फरमाई। बहरहाल अमरीका में जो इकतसादी बहरान है और जो डेडलॉक है वो जारी है, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं, जबकि सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। और जहाँ तक आलमी मईशत पर अमेरिका के बहरान के असरअंदाज होने का सवाल है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने सिस्टम इस तरह से बनाया है कि आलमी मईशत वाबस्ता हो गई है अमरीकी मईशत से, अमरीकी डॉलर से वाबस्ता है। अगर ये वाबस्तगी दुनिया के ममालिक ख़त्म कर लें तो जाहिर है कि फिर वो अमेरिका के बहरान से अपनी मईशत को महफूज रख सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है अंदाज़ _ जहान @SRTV.IR. इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं।